पृष्ठ संख्या 144, अध्याय 15, साथ संगत। तबला वाद्य की निर्मिति और उसका उपयोग प्रमुखतः साथ संगत के लिए किया गया है। वर्तमान काल में ही नहीं, भविष्य काल में भी वह प्रमुखतः साथ संगत के लिए ही उपयोग में लाया गया। तबले की साथ संगत निम्नलिखित सभी संगीत प्रकारों के लिए की जाती है। पहला ध्रुपद धमार गायकी, दूसरा ख्याल गायन, तीसरा उपशास्त्रीय गायन, ठुमरी दादरा टप्पा गजल, चौथा सुगम संगीत, भावगीत, भक्ति गीत, प्रेम गीत, श्रृंगार गीत, लोक गीत, समूह गीत इत्यादि। पांचवा वाद्य संगीत, सितार, सरोद, संतूर, वायलिन, जल तरंग इत्यादि। छठवां नृत्य संगीत, कथक। सातवां सुगम नृत्य संगीत, लावणी इत्यादि। कोई भी संघ जब कार्यरत रहता है तब उस संघ का उद्देश्य सामूहिक परिणाम कारकता साधना यही होती है, किम बहुना होना चाहिए। प्रत्येक सांघिक कार्यक्रम में एक निर्धारित लक्ष्य रहता है और उसे साध्य करने के लिए सभी संघ सदस्यों को इस तरह का अत्यंत पूरक एवं समुचित योगदान देना चाहिए कि संघ के सामूहिक प्रयत्नों से अपेक्षित परिणाम आदर्श रूप में साध्य हो सके। उदाहरण के लिए क्रिकेट की टीम या संघ के खिलाड़ियों की वैयक्तिक कुशलता, प्रावीण्य भले ही अलग अलग हो किंतु प्रत्येक खिलाड़ी को अपने व्यक्तिगत कौशल, सफलता, कीर्ति का विचार न करके इस ढंग से अपना खेल खेलना चाहिए कि जिससे संघ का उद्दिष्ट लक्ष्य साध्य हो। संघ भावना का आदर्श रूप पाश्चात्य संगीत का ऑर्केस्ट्रा माना जा सकता है। यह ऑर्केस्ट्रा सुनते या प्रत्यक्षतः टीवी पर देखते समय हमें यह महसूस होता है कि 50 से 70 वादक कलाकारों के वाद्य वृंद में प्रत्येक वादक समान रूप में महत्वपूर्ण होता है। कोई भी एक वादक विशेष महत्वपूर्ण नहीं होता। बजाई जाने वाली रचना का कौन सा टुकड़ा किस किस कलाकार को कैसे बजाना चाहिए यह निश्चित किया रहता है और वह वैसा ही बजाता है। उक्त 50 से 70 कलाकार अपने एक नेता की अपेक्षा के अनुसार अत्यंत आदर्श रूप में कलाकृति का निश्चित परिणाम साधने के लिए उच्च स्तर, अनुशासनबद्धता और समन्वय, इन तीन सूत्रों से अपना अपना वादन इस रीति से करते हैं कि मानो प्रचंड प्रतिभाशाली और कर्तव्यवान कोई महामानव अपने 140 हाथों से ये 70 वाद्य बजा रहा हो। पृष्ठ संख्या 145। संक्षेप में संघ भावना के एक आदर्श उदाहरण के रूप में ऑर्केस्ट्रा की ओर निर्देश किया जाता है। उपर्युक्त विवेचन और विशेषतः उनका निचोड़ भारतीय संगीत के प्रस्तुतीकरण के लिए बहुतांश में लागू है। जिस समय गायन, वादन अथवा नृत्य प्रस्तुत किया जाता है उस समय संबंधित कलाकार की साथ संगत के लिए तबला, हारमोनियम या सारंगी और तानपुरा आदि वाद्यों का यथोचित सहभाग होता है। इस प्रस्तुतीकरण में प्रमुख उद्दिष्ट यह होता है कि उससे उच्च स्तर की परिणाम कारकता साध्य की जाए। प्रमुख कलाकार के लिए अपने अकेले के प्रभुत्व के बल पर वह उद्दिष्ट साध्य करना असंभव है। उसे तानपुरे के सुरीले वातावरण की आवश्यकता होती है। तबले पर, हारमोनियम पर अपेक्षित साथ संगत की भी जरूरत होती है। मुख्य कलाकार का कला प्रस्तुतिकरण कैसा होता है और कैसा हो, यह अलग विषय है, किंतु संगीत में मुख्य कलाकार अपने प्रस्तुतिकरण में जो परिणाम साध्य करना चाहता है उसके लिए संगतकार को अनुरूप और उचित साथ संगत कैसे करनी चाहिए, इसके संबंध में मार्गदर्शन आगे किया गया है। गायन का प्रस्तुतिकरण तथा संगतकार के लिए मार्गदर्शन। पहला, आलापी ख्याल। बंदिश के आलाप में तबला वादक को कुछ भी बजाना नहीं होता, किंतु वह गायन कला का रसिक हो यह अपेक्षा होती है, इसलिए श्रोताओं की ही तरह उसे भी वह आलापी मनःपूर्वक और रसिकता के साथ सुननी चाहिए और चेहरे के भावों एवं संयमित शारीरिक हालचालों में उस आलापी के अनुरूप दाद देनी चाहिए। दूसरा, बंदिश का प्रस्तुतिकरण उसके आलाप एवं बोल आलाप। अत्यंत सुरीले रूप में मिलाए हुए तबले पर अपेक्षित लय में ठेका पकड़कर पहले दो आवर्तनों में मूलभूत लय को गायक की अपेक्षा के अनुसार पक्का कर लिया जाए और बंदिश का मुख कितनी मात्राओं का है वह मन में जांच कर आगे ठेका बजाना चालू रखा जाए। इस शुरू के प्रस्तुतिकरण में गायक को मन की एकाग्रता से राग स्वरूप को कलात्मक रीति से प्रस्तुत करना होता है। उस समय उसकी एकाग्रता में रुकावट आए ऐसा वादन न किया जाए। तीसरा, बहलावे बोल ताने एवं प्राथमिक तान क्रिया। पृष्ठ संख्या 146। यहाँ लय अच्छी तरह स्थापित हुई होने से और गायक के लयकारी के प्रदेश में प्रवेश किए जाने के कारण उक्त प्रस्तुत की गई लय में अनुरूप पेशकार रचना के प्राथमिक शब्द प्रयोगों की सहायता से ठेका भरी की जाए और तत्सम शब्द प्रयोगों से बंदिश के मुखड़े के अनुरूप शब्दों की मदद से सम पर आ जाए। यहाँ सम पर आते समय धीमी लय में तिहाई का एकाध टुकड़ा बजाने में कोई हर्ज नहीं है। चौथा, बोल तान। गायन के ताल और लय के पक्केपन को ध्यान में रखकर निम्नांकित दो प्रकारों से साथ संगत की जा सकती है। अ, यदि गायक लयकारी युक्त तान ले रहा हो तो उसके अनुरूप शब्दों के समांतर लयकारी में गायक के साथ दो से चार मात्राएं बजाई जाएं और उसी शैली में गायक के साथ सम पर आ जाए। ब, गायक जब लयकारी युक्त बोल तान ले रहा हो तो उस समय वजनदार ठेका चालू रखा जाए और उसकी तान समाप्त होने पर जब वह विश्राम लेता है तब उस लय के मुताबिक सुयोग्य शब्द रचना द्वारा दो से चार मात्राएं भर के संगत की जाए, जिससे गायक द्वारा की गई तान क्रिया का एहसास श्रोताओं को हो जाए। उपर्युक्त दोनों प्रकारों में एक बात का ख्याल रखना आवश्यक है कि यह बजाना गायक को पसंद है या नहीं, यह आजमाना चाहिए। विशेषतः यदि गायक लय का कच्चा हो तो ऐसा वादन टाला जाए। पांचवा, मध्य लय की बंदिश। इस बंदिश के साथ ठेका पकड़ते समय ताल की लय का पूरा अंदाजा आया हो तो तबला वादक को चाहिए कि वह दो एक आवर्तनों का एकाध सुंदर टुकड़ा बजाते हुए तिहाई लेकर सम पर आए। यह टुकड़ा मध्य लय की बंदिश के मुखड़े के अनुरूप हो तो महफिल में एकदम चैतन्य पैदा होता है। यहाँ ठेका वजनदार होना चाहिए और बाएं और नाजुक चाट के की सहायता से ठेके में आवश्यकता अनुसार छोटा मोटा फर्क करके बंदिश के प्रस्तुतिकरण में रंगत लाई जाए। छठवां, द्रुत गति का गायन, तराना। यहाँ सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि ठेका अत्यंत स्वच्छ, वजनदार, द्रुत गति में बजाया जाए, जिससे कि गाने का श्रोताओं पर अच्छा प्रभाव पड़े। परिस्थिति के अनुसार छोटे बड़े अनुरूप टुकड़े बजाने में कोई हर्ज नहीं है। सातवां, उपशास्त्रीय संगीत। ख्याल गायन में सर्वसाधारणतः शांत रस और किंचित करुण रस पैदा करना गायक का लक्ष्य होता है। पृष्ठ संख्या 147। जबकि ठुमरी, गजल, दादरा के गायन में विशेषतः श्रृंगार, करुण, कभी कभी शांत रस पैदा हो, यह गायक की अपेक्षा होती है। गायक का यह उद्दिष्ट अच्छी तरह साध्य हो, इसी उद्देश्य से तबले पर साथ संगत करना आवश्यक है। इस बात का ख्याल रखा जाए, इसी लिए इस संगीत में अत्यंत नाजुक चाट और वजनदार घुमारे के बाएं का उपयोग अपेक्षित होता है। बाएं पर के दबाव घिसाव के जरिए ठेके की गति में विविध प्रकारों द्वारा उचित परिणाम साध लिया जाए कि अक्षर बजाते समय उसे यथा आवश्यक फैले हुए पंजे से न बजाकर बंद मुट्ठी से या चुटकी से बजाया जाए तो वह श्रृंगार रस के प्रस्तुतिकरण में अधिक उपयुक्त होता है। इस गायन प्रकार में विविध प्रकार की लग्गियां वजनदार एवं तैयारी में बजाई जानी चाहिए। उसी प्रकार उन लग्गियों की कलात्मकता के साथ लौट पलौट करने से अपेक्षित परिणाम अच्छी तरह साध्य होता है। कुछ तबला वादकों को ऐसी लग्गियां शुरू होने पर लय बढ़ाने का मोह होता है। उस हालत में गायक को वह मुखड़ा बड़ी हुई लय में गाना पड़ता है। ऐसा वादन उचित नहीं है, क्योंकि पुनः मूल लय में जब ठेका पकड़ने की बारी आ जाती है तब गायक और तबला वादक के लिए जो थोड़ी सी धांधली होती है उससे रस हानि हो जाती है। आठवां, ध्रुपद धमार गायन। इस गायन शैली के लिए पखावज की वादन शैली का सीमित उपयोग करने की आवश्यकता होती है, इसलिए हमेशा ढाले स्वर का तबला लेना आवश्यक है और खुले हाथों से पूरब वादन शैली की मदद से ठेका बजाया जाए तो उससे उचित परिणाम साध लिया जाता है। ध्रुपद धमार के गायक लयकारी में पक्के होते हैं, फलतः समांतर वादन शैली में गायक की लयदार गायकी के अनुरूप उपज अंग की साथ संगत अगर तबला वादक ने की तो उचित परिणाम साध्य किया जा सकता है। बैठे बिठाए हुए टुकड़े सहसा काम नहीं आते। इस गायन की साथ संगत करने के लिए चौताल, धमार आदि अन्य तालों का अध्ययन किया जाना आवश्यक है, क्योंकि केवल त्रिताल पर का प्रभुत्व यहाँ काम नहीं आता। लंबे पल्लों के पर्णों का स्वतंत्र अध्ययन किया होना चाहिए, जिसके अनुरूप साथ संगत करना सुविधाजनक होता है। नौवां, वाद्य संगीत। वाद्य संगीत दो प्रकार के हैं। पहला, वायलिन, सारंगी इत्यादि वाद्य जो गज से बजाए जाते हैं, अथवा शहनाई, बांसुरी वाद्य जो फूंक से बजाए जाते हैं। ये वाद्य दीर्घ काल तक एक स्वर लगा सकते हैं और इनसे गायकी को सुलभता के साथ प्रस्तुत किया जा सकता है। इन वाद्यों से यद्यपि लय की विविधता दिखाई जा सकती है, तो भी लयकारी के अंगों के प्रस्तुतीकरण के लिए ये वाद्य आदर्श रूप में पोषक नहीं है। पृष्ठ संख्या 148। फलतः प्रभावी लयकारी की विविधता मर्यादित रूप में ही इन वाद्यों से पेश की जा सकती है। पंडित गोपाल मिश्र जैसे सारंगी वादक अथवा पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जैसे बांसुरी वादक आदि इन्हें गिने वादकों ने यद्यपि अपने वादन के जरिए विविध लयकारी के प्रदर्शन का ऊंचा स्तर हासिल किया हो, फिर भी यह कहना पड़ेगा कि यह वाद्य प्रकार विविध सूक्ष्म लयकारियों के प्रदर्शन के लिए योग्य नहीं है। इसीलिए जो कलाकार ऐसे वाद्यों के जरिए गायकी प्रधान रागदारी प्रस्तुत करते हैं, उनकी साथ संगत के लिए उपरोल्लिखित गायन के अनुरूप साथ संगत का तंत्र अच्छी तरह उपयोग में लाया जा सकता है, और उस संदर्भ में साथ संगत कैसी हो इसी विषय में अलग विवेचन आवश्यक नहीं है। दूसरा, वाद्यों का दूसरा प्रकार यानी सितार, सरोद, गिटार, सुरबहार, संतूर, वीणा, जलतरंग इत्यादि, ऐसे वाद्य जिनमें ध्वनि को आघात से पैदा किया जाता है और उस ध्वनि की अखंडता को वादक की मर्जी के अनुसार लंबाया नहीं जा सकता, क्योंकि शीघ्र ही वह ध्वनि हवा में विलीन हो जाती है। दूसरी ध्वनि पैदा करने के लिए दूसरे आघात की आवश्यकता होती है। फलतः इन वाद्यों में अविरत रूप में आघात करने पड़ते हैं। इस आघात प्रक्रिया से लय निर्मिति सहज रूप में होती है। दीर्घ काल तक स्वर न लगाए जाए सकने से मानवीय गायकी की निर्मिति नकल इन वाद्यों द्वारा तुलनात्मक दृष्टि से कम मात्रा में साध्य की जा सकती है, किंतु बार बार आघात करने की प्रक्रियाओं के माध्यम से विविध प्रकार की लय निर्मिति करना आसान होने से इन वाद्यों द्वारा प्रमुखतः लयकारी का वादन ही किया जाना देखने में आता है। इसीलिए इस वादन के लिए तबले पर की जाने वाली साथ संगत का तंत्र अलग होता है। इस संबंध में कुछ मार्गदर्शक विचार यहाँ प्रस्तुत किए गए हैं। सितार, सरोद, संतूर इत्यादि वाद्यों के लिए तबले की साथ संगत करने वाले को प्रथमतः कुछ बातों का आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल कर लेना चाहिए, जो इस प्रकार है। अ, उसे सोलो वादन की विधिवत शिक्षा ग्रहण कर लेनी चाहिए। ब, तिट, तिरकिट, धिनगिन, दिन दिन, धीर धीर शब्द इनमें अंतर्भूत है। ऐसे बोल समूह का वादक को विशेष रियाज करना चाहिए। उसी प्रकार उचित बोल समूहों वाले रेलों या चलनों का विशेष रियाज करना चाहिए। विविध प्रकार की एवं विविध आकारों वाली तथा भिन्न भिन्न विश्रांति कालों वाली बड़ी, मध्यम एवं छोटी तिहाइयों का अध्ययन करके अत्यंत तैयारी में प्रभावी ढंग से और समुचित रूप से ठेका बजाते समय उनका उपयोग करने योग्य कौशल हासिल कर लेना चाहिए। पृष्ठ संख्या 149। क, सोलो वादन की विविध रचनाओं का ज्यों का त्यों उपयोग साथ संगत में करना उचित नहीं है। इसीलिए रचना प्रकारों की वादन क्रिया में कल्पकता से उचित परिवर्तन करके उन्हें साथ संगत के योग्य बनाने की जरूरत होती है। उसके लिए उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद जाकिर हुसैन, पंडित सपन चौधरी जैसे दिग्गज तबला वादकों के साथ संगत के कैसेट्स सुनकर उनका अध्ययन करना, उन पर चिंतन करना आवश्यक है और उनकी बजाई हुई विविध तिहाइयाँ और अलग अलग लयकारी के प्रकारों का ज्ञान प्राप्त करके अपने से सहजता से और समर्थता से बजाई जा सकें, ऐसी रचनाओं का रियाज करके उन्हें आत्मसात कर लेनी चाहिए। ड, बड़े मुंह वाले और टीप वाले दोनों प्रकार के तबलों पर बजाने के अक्षरों के निकास के तंत्र पर्याप्त भिन्न हैं, इसलिए इन वाद्यों पर साथ संगत करने के इच्छुक तबला वादकों को चाहिए कि वे टीप वाले तबले पर अत्यंत सुरीले नाद पैदा करने के लिए ध्यानपूर्वक चाट का रियाज करें। बायां बजाने के लिए दबाव घिसाव के तंत्र को अलग अलग परिणाम पैदा करने वाले घुमारों का भी विशेष रियाज करना चाहिए। ई, इन वाद्यों पर वादन करने का आखिरी टप्पा है झाला वादन। सर्वसामान्य श्रोता इस वादन प्रकार से बहुत ही उत्तेजित और प्रभावित होता है। परिणाम साधने के लिए तबला वादक का नाधिन धिन्ना ठेका पर्याप्त तैयारी में वजनदार एवं सुरीले रूप में बजाने की आवश्यकता होती है। इसलिए एक उंगली तर्जनी का नाधिन धिन्ना, मध्यमा तर्जनी से बजाया हुआ नाधिन धिन्ना, चपकी का नाधिन धिन्ना और उस लय में बाएं पर सब भरी के घे बजाने का ध्यान पूर्वक रियाज करके उस पर प्रभुत्व पाने की आवश्यकता होती है। फ, विविध लंबाई के यानी मात्रा आकारों के बोल समूह ऐन वक्त पर बजाने की क्षमता रखने वाले वादक कलाकार की साथ संगत का वादन अत्यंत उच्च स्तर का माना जाता है, अतः उसके लिए विशेष अलग विचार मंथन एवं प्रायोगिक वादन गणित का स्वतंत्र अध्ययन करने की भी आवश्यकता है। अब हम यह देखें कि ऐसे वाद्य प्रकारों की प्रत्यक्षतः साथ संगत करते समय संगतकार को किस प्रकार वादन करना चाहिए। पृष्ठ संख्या 150। वाद्य वादन का प्रस्तुतीकरण तथा संगतकार के लिए मार्गदर्शन। पहला, आलाप जोड़ झाला। तबला वादक को चाहिए कि वह आलापों को रसिकता के साथ सुने और संयमित दाद देता जाए। जोड़ एक लय में शुरू होती है और उसके आधार पर लयबद्ध रूप में राग प्रस्तुतिकरण हुआ करता है। तबला वादक को चाहिए कि उस लय को अच्छी तरह समझकर बीच बीच में हाथ के, आंख के अथवा बाएं के इशारे से उस लय को दर्शाते हुए उक्त प्रस्तुतिकरण का रसास्वादन ग्रहण करता जाए। ब, विलंबित गत, मसीत खानी अथवा तत्सम। गत जब पहली बार प्रस्तुत की जाती है तब वह किस ताल में है यह जानकर ठेका शुरू किया जाए, अर्थात इस समय वादनकार या श्रोत्री वर्ग की यह अपेक्षा नहीं होती कि यहाँ केवल ठेका बजाया जाए। इसलिए पेशकार अथवा तत्सम धीमी लय में वादक को ठेका भरी शुरू करनी चाहिए। कुछ समर्थ वादक इस समय एकाध रचना चलन को ड्योढ़ी, दुगुनी, तिगुनी, चौगुनी इत्यादि गुणितों में विकसित करते हैं और इस प्रकार 3 से 4 आवर्तनों तक वादन करने पर एक दीर्घ पल्ले की अनुरूप तिहाई से इस रचना को समाप्त करते हैं। कुछ तबला वादक इस समय केवल पेशकार के अंग से रचना का एक गुना लय में ही वादन विस्तार करते हैं और एक धीमी लय की किंतु आकर्षक छोटी सी तिहाई में उस रचना की समाप्ति करते हैं। इस प्रकार धीमी लय में ही रचना को समाप्त करने के मूल में संगतकार का यह हेतु होता है कि अगर बंदिश धीमी लय में शुरू हो गई हो तो तबला वादक को दुगुन या चौगुन में जाने का कारण ही नहीं है। अर्थात दोनों प्रकार के वादन विचार प्रचलित हैं। अच्छे संगतकार को इन दोनों प्रकारों का कुशलता के साथ वादन करते हुए संगत करनी चाहिए। दूसरा, वादक कलाकार बाद में चतरस्र तिस्र जातियों के माध्यम से लयबद्ध सूत्रों से राग विस्तार करते हैं और विविध प्रकार की कलात्मक तिहाइयों से उस सूत्र विचार की समाप्ति करते हैं। कभी ऐसी तिहाई मुखड़ा शुरू होने की मात्रा पर समाप्त होती है तो कभी सम पर, कभी वह अनाघात होती है तो कभी अतीत स्वरूप की होती है। ऐसी हालत में संगतकार को चाहिए कि वह अनुरूप लयबद्ध सूत्रों से ही रचना विस्तार करे और यथासंभव वादक की बजाई हुई तिहाई की प्रतिकृति इस ढंग से बजाए कि वह तिहाई उसी मात्रा पर समाप्त हो जिस मात्रा पर वादक कलाकार ने उसे पहले समाप्त किया था। कई बार ऐसा होता है कि वह अचूक बैठने वाली तिहाई संगतकार को ऐन मौके पर नहीं समझती सूझती। ऐसी हालत में संगतकार को चाहिए कि वह उस वादन प्रकार के नज़दीक होने वाली रचना की मदद से संगत करे। वादक कलाकार की लयबद्ध अभिव्यक्ति से संपूर्णतः विसंगत होने वाली किंतु केवल अपने हाथ से वह रचना अच्छी बजती है इसलिए उसे बजाया जाए तो प्रायः रस हानि हो सकती है और जानकार श्रोता ऐसे वादन के लिए नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। पृष्ठ संख्या 151। तीसरा है मध्य लय की गत। यहाँ भी तबला वादक को चाहिए कि वह एक प्रभावी पूरब अंग का टुकड़ा बजाए अथवा धातिरकिट या धिनगिन इत्यादि शब्द युक्त रेला तैयारी में बजाकर उसके कलात्मक पलटे करके एक सुंदर तिहाई से उसका अंत इस प्रकार करे कि उसे श्रोताओं से और वादक की ओर से उत्स्फूर्त दाद मिले। यहाँ वादक का हाथ भी तैयार फिरता रहता है और वह एक के बाद एक विविध लयाकृतियों कलाकृतियों को प्रस्तुत किया करता है। उस समय उससे इशारा प्राप्त होते ही संगतकार को चाहिए कि वह उस कल्पनाकृति से मिलती जुलती कल्पनाकृति अपने तबले से प्रस्तुत करे। इस प्रकार मुख्य वादन प्रभावी हो इस ढंग से अनुरूप संगत की जाए। चौथा है द्रुत लय की गत और झाला। यहाँ प्रमुखतः वादक कलाकार का नाधिन धिन्ना का रियाज मदद पहुँचाता है। सुरीले तबले पर बजाया हुआ एक उंगली का नाधिन धिन्ना चाट के ता और लौ की स्याही पर की तीन इन स्वरमय ध्वनियों से अत्यंत पोषक वातावरण पैदा करता है। इस नाधिन धिन्ना को नजाकत के साथ और जोरदार रूप में बिना थके बजाने की क्षमता पर तबला वादक का प्रभाव निर्भर करता है। द्रुत लय में प्रभावात्मकता के साथ बजाए जाने वाले चलन अलग अलग होते हैं और द्रुत लय में मात्रा का आकार बहुत छोटा होने से इसमें प्रस्तुत होने वाला गणित और तिहाई के रूप भी बहुत अलग हो जाते हैं। उस हालत में अनुरूप तिहाई को अचूकता के साथ बजाना बहुत ही प्रभावी सिद्ध होता है। ऐसी तिहाई समाप्त होने के पश्चात नाधिन धिन्ना के प्रवाह का वादन अविरत रूप में चालू ही रखने से एक निराला ही परिणाम साध लिया जाता है। कई बार एक चमत्कृति के तौर पर सवाल जवाब का वादन प्रकार बजता है। उस समय तबला वादक अगर हाजिर जवाबी के साथ अनुरूप जवाब बजाए तो सामान्य श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाता है। सर्वसाधारणतः झाला को समाप्त करते समय मुख्य वादक विशेष लयकारी में रूढ़ लोकमान्य पद्धति से तिहाई बजाता है, और ऐसी हालत में तबला वादक द्वारा उसकी बराबरी से ही वे लयकार युक्त ताने तबले पर बजाकर एक ही समय तिहाई लेकर वादन समाप्त किया जाना वादन का परमोच्च बिंदु होता है, और वहाँ तबला वादक कम नहीं पड़ना चाहिए। पृष्ठ संख्या 152। सर्वसाधारणतः गायन और वादन की साथ संगत के लिए संगतकार तबला वादक एवं मुख्य कलाकार का समान रियाज नहीं हुआ होता है, और दोनों कलाकार एक दूसरे की वादन शक्ति से परिचित नहीं होते हैं। इसलिए इस प्रकार की साथ संगत कैसे की जाए, इस विषय में उपर्युक्त विचार प्रस्तुत किए गए हैं। कई बार यह साथ संगत परिणाम कारक रूप में संपन्न हुई प्रतीत नहीं होती। इसके कुछ प्रमुख कारण निम्नांकित हैं। पहला, संगतकार तबला वादक को गायन और राग संगीत का जानकार और रसिक होना चाहिए, किंतु केवल तबले की शिक्षा ग्रहण करके उस पर खूब रियाज करने वाला तबला वादक कभी-कभी अपने वादन से वादक कलाकार और श्रोताओं को कैसे प्रभावित कर सकेगा यह दर्शाने के लिए उतावला रहता है। इस हालत में वह जो वादन करता है वह रस हानिकारक ही होता है। दूसरा, वादक कलाकार को कभी-कभी उसके कला प्रस्तुतिकरण में तबले की अनुरूप साथ संगत कितनी अच्छी भूमिका अदा कर सकता है इसका एहसास ही नहीं होता, और उसे लगता है कि तबला केवल ताल दर्शाने तक ही सीमित होता है। इस वजह से भी संगतकार प्रभावहीन हो जाता है। कदाचित अनुरूप साथ संगत के अभाव में मुख्य कलाकार का प्रस्तुतिकरण भी कम प्रभावशाली होता होगा। तीसरा, वादक कलाकार जब लय में कच्चा होता है तब स्वभावतः उसका प्रस्तुतिकरण आत्मविश्वास शून्य हो जाता है। कभी-कभी संगतकार पर्याप्त तैयारी एवं प्रभावी होता है। सच कहा जाए तो ऐसी हालत में लय पर प्रभुत्व न होने वाले और तुलनात्मक दृष्टि से लय के अंग में दुर्बल कलाकार समर्थ तबला वादक की साथ संगत न ले यही श्रेयस्कर होगा। किंतु ऐसे बड़े कलाकार को साथ संगत के लिए लेने के मौके का मोह लय में दुबले वादक कलाकार को होता है। चौथा, बड़े तबला वादक या लय पर प्रभुत्व रखने वाले कलाकार श्रोताओं में बैठे हों तो उनकी तरफ देखकर और केवल उन्हें सुनाने के उद्देश्य से कभी-कभी संगतकार अलग-अलग रचनाएं और लयकारी बजाकर उनसे दाद पा लेता है, किंतु उसी समय वादक कलाकार का प्रस्तुतिकरण प्रभावहीन हो रहा है इसका ख्याल उसे नहीं होता। पृष्ठ संख्या 153। क, नृत्य। कथक संगतकार के लिए मार्गदर्शन। कथक नृत्यों की साथ संगत करने के इच्छुक तबला वादक के लिए विशेष शिक्षा, खास रियाज और कौशल की आवश्यकता होती है, और इन सबको उसने प्रयत्न पूर्वक साध्य किया हो तो कथक नृत्य की साथ संगत प्रभावी हो सकती है। पहला, कथक नृत्य की रचनाओं की भाषा पारंपरिक तबले की भाषा नहीं होती, इसलिए उस भाषा के अक्षरों शब्दों का तबले पर निकास कैसा होता है सो कथक नृत्यकार से अथवा कथक का तबला अच्छी तरह बजाने वाले कलाकार से जान लेना अत्यंत जरूरी होता है। इसलिए उन रचनाओं में आए हुए शब्द समूहों को उन निकासों के अनुरूप रियाज करके हस्त साध्य कर लेना चाहिए। दूसरा, दिल्ली अजराणा बाज की शिक्षा प्राप्त किए हुए तबला वादक का हाथ वह तबला योग्य ढंग से बजाया जाए इस उद्देश्य से विशेष प्रकार से तैयार हुआ होता है। ऐसा हाथ कथक की तबला संगत के लिए अयोग्य होता है, अतः ऐसे तबला वादक को अपना हाथ खुला कर लेना चाहिए। कथक में तबले पर थाप का प्रयोग बार बार होता है, इसलिए तबला वादक को चपलता एवं क्षमता के साथ थाप का प्रयोग करने की योग्यता प्राप्त करनी चाहिए। उसे लखनऊ बनारस अंग से खुले हाथ से जोरदार रूप में गत टुकड़े बजाने का रियाज करना चाहिए। तीसरा, तत्कार विस्तार कथक का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रभावी भाग होता है, अतः उस वादन के लिए उपयुक्त बोल समूहों का रियाज करके उन्हें जोरदार रूप में बजाना आना चाहिए। कथक नृत्य में तांडव नृत्य के माध्यम से वीर, रौद्र इत्यादि रसों की निर्मिति होती है और उस परिणाम को तबले से निकालने के लिए संगतकार को अत्यंत जोरदार एवं खुला तबला बजाना आना चाहिए। कथक नृत्य में श्रृंगार, करुण और शांत रसों की अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण भाग होता है। तदनुरूप रस निर्मिति के लिए अत्यंत नजाकत के साथ चाट का एवं बाएं पर के दबाव घिसाव से निकलने वाले प्रभावी घुमारे का भी रस पोषक प्रयोग साथ संगतकार को करना आना चाहिए। पांचवा, कथक के टुकड़े यथासंभव कंठस्थ करके उन्हें हाथ से निकालने का रियाज संगतकार को करना चाहिए। तीन ताल सहित विविध तालों का भी उन्हें अध्ययन करना चाहिए। उसी प्रकार तबले में विविध एवं निश्चित आकार के बोल समूह बनाने का विशेष अध्ययन और रियाज उसे कर लेना चाहिए। पृष्ठ संख्या 154। समझ बूझकर अलग अलग मात्राओं के बोल समूह हुक्मी रूप में तत्काल बजाने की क्षमता प्राप्त कर सके, इस दृष्टि से उसे रियाज करना चाहिए। छठवां, हो सकता है कि संगतकार के पास तबले की अच्छी अच्छी रचनाओं का संग्रह हो, किंतु वे रचनाएं प्रायः ज्यों की त्यों साथ संगत में नहीं बजाई जा सकती। ऐसी हालत में उनमें उचित बदल करके उनकी सुयोग्य पुनर्रचना करने अथवा उनमें अंतर्भूत शब्दों का साथ संगत में उचित स्थान पर उपयोग करने का ज्ञान एवं कौशल संगतकार को अवगत कर लेना चाहिए। सर्वसाधारणतया यह ज्ञान गुरु से प्राप्त होने की अपेक्षा न की जाए, इसके लिए अलग अलग समर्थ संगतकारों के द्वारा कथक नृत्यकारों के लिए की गई साथ संगत का निकट से अवलोकन करके तथा उनके विषय में सूक्ष्म अध्ययन, चिंतन एवं मनन किया जाए तो प्रभावी साथ संगत करने का मार्ग प्राप्त हो सकता है। साथ संगत के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं। किसी भी संगीत प्रकार की तबले पर साथ संगत करते समय कुछ बातों पर ध्यान देना आवश्यक है। वे बातें संक्षेप में इस प्रकार हैं। संगतकार की लय पक्की होनी चाहिए। दूसरा, ठेका अनुरूप रस पैदा करने वाला वजनदार एवं वर्तूलाकार होना चाहिए, जिससे मुख्य कलाकार को कला प्रस्तुतिकरण में आनंद, उत्साह और सुविधा प्राप्त हो। भावाभिव्यक्ति में अगर कलाकार रम गया हो तो कुछ अक्षरों की मदद से मात्रा का मुकाम सूचित करने वाला मार्गदर्शक ठेका लगाया जाए, जिससे सम के आगमन की आहट कलाकारों को लगे। तीसरा, संगतकार को सभी संगीत प्रकारों का अच्छा रसिक होना चाहिए और उसे कला प्रस्तुतिकरण के उद्देश्यों का निरंतर भान रहना चाहिए। चौथा, तबला बाएं की पूरी अच्छी सुरीली हो। पांचवा, तबला अच्छी तरह सुर में मिलाया हो। तबले की चाट सुरीली और खुली बजाई जाए, बिना गूंज वाली या लकड़ी की सी आवाज करने वाली चाट न बजाई जाए। तबले पर किनार पर का ना और लौ पर का ता ये अक्षर तानपुरे के सड़ज में एक रूप में हो, इस तरह सुरीले बजने चाहिए। संक्षेप में तबले को लयबद्ध तीसरे तानपुरे की भूमिका अदा करनी चाहिए।